हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की, समवेत भक्त वृंद की, नितार गौर की। सोमवार की परंपरा के अनुसार आपके श्री चैतन्य चिंतामत से पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। मध्य लीला नवम अध्याय श्लोक संख्या 98, इसका आवृत्ति करेंगे। विप्र कहे मूर्ख मी शब्दार्थ न जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। शब्दार्थ विप्र कहे ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख आमी मैं अनपढ़ मूर्ख। शब्द अर्थ शब्द का अर्थ, ना जानी नहीं जानता, शुद्ध अशुद्ध कभी शुद्ध कभी अशुद्ध। गीता पढ़ी भगवद गीता पढ़ता, गुरु आज्ञा मानी अपने गुरु के आज्ञा को स्वीकार करके। अनुवाद, उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं मूर्ख हूं अनपढ़ हूं, अतः मैं शब्द का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। तात्पर्य, यह ऐसी व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जो भगवत गीता का गलत पाठ करते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सका। उसके आध्यात्मिक कार्य शब्दों के सही उच्चारण जैसी भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे, प्रतीत उसकी सफलता अपने गुरु की उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने पर आश्रित थी। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाश्यन्ति महात्मनः। केवल उन महात्माओं को ही जिन्हें भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है। ये स्वतः सत्ता उपनिषद में है ये बात। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवद गीता या श्रीमद भागवत के शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। इसी तरह जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समान श्रद्धा होती है, उसे भी शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। हरे कृष्णा। आज भी प्रातःकालीन सत्संग में पधारे सभी भक्तगण मातृगण को श्री राधा राधिका रमण की तरफ से स्वागत है। तो ये प्रसंग इस प्रकार है, आप शायद भूल गए होंगे क्या प्रसंग है, कि श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत के यात्रा के दौरान श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। चतुर्मास के समय था, महाप्रभु अब चतुर्मास के नियम के अनुसार तो यात्रा नहीं करेंगे, एक जगह में रुकेंगे। तो रंगक जी के मुख्य पुजारी श्री वेंकट भट्ट के अनुरोध के कारण महाप्रभु उनके घर में निवास किए। 4 महीना उनके घर में रहे। क्या करते थे 4 महीना? ना प्रतिदिन प्रातः काल में उठ करके पुण्य पावन कावेरी में स्नान करके श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रांगण में आकर के खूब नृत्य कीर्तन करते थे सुबह सुबह। अब जब सुबह सुबह कावेरी स्नान के उपरांत आकर के रंगनाथ के प्रांगण, आजकल अब रंगनाथ मंदिर में जाएंगे तो प्रांगण है नहीं, सब ग्रिल भरा हुआ है, जागे नहीं। पहले जमाने ऐसे था नहीं, लाइन सिस्टम था नहीं, खुला था, और जाकर खूब नृत्य नाच नहीं सकते सब, 50 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, सब लाइन को जागे नहीं। तो लेकिन प्रांगण ऐसा था, तो महाप्रभु जा करके विशाल मंदिर है उनके नाट मंदिर के सामने खड़े होकर के दूर से रंगनाथ जी को दर्शन करे, खूब नृत्य कीर्तन कर रहे थे। और चतुर्मास के समय लोग दूर दूरांत से भगवान के मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, है ना, पुण्यमास है ना, दर्शन करते। और भगवान चतुर्मास में प्रभात है कि सोए हैं, और वो तो सोते हुए भगवान है ही, हम भी देखने ज्यादा आते हैं स्लीपिंग गार्ड। तो लेकिन जितने हजारों हजारों लोग आते भगवान को देखने के लिए, अब कोई भगवान मंदिर में नहीं जाता देखने के लिए ना, नहीं जाता। क्यों? लोको देखी चमत्कार, भगवान सिवन महाप्रभु के इतने सुंदर रूप था, आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताख्यो, इस प्रकार कमल जैसे आंख चमचमाते हैं, सोने की चेहरा, 7.5-8 फीट का हाइट, लंबे लंबे हाथ, इस प्रकार प्रकांड शरीर में उर्द्वबाहु होकर के और इतने नृत्य कर रहे थे, सारे लोग फॉरगेट टेम्पल डीटी की छोड़कर से उनको देख रहे थे। यहां तक कि जो पुजारी वो भी आरती ऐसे कर रहा था, हम ये सोने हुए भगवान को कौन पूछे, नाचने हुए भगवान को पूछेंगे ना, पूछे भगवान जो उठकर नाचेंगे सोने वाले को मान रहेगा नहीं। वो उनको लगा कि रंगनाथ जी उठकर नाच रहे इधर, अभी सोने का पीरियड है, नाच रहे इधर। अब नृत्य ठाणी में भगवान को दर्शन कर रहे थे असंख्य लोग घर के, वो जो देख रहे थे उनका ऊपर प्रभाव पड़ता था। क्या सारे लोग देख के चमत्कृत होकर देखते थे, उनको पता नहीं वो रंग क्षेत्र में कोई भी लोग कृष्ण नाम लेते, नमो नारायण नारायण नारायण, ये उनका मंत्र है, क्या है, नमो नारायण। लेकिन पता ही नहीं उनका जीभा से नारायण शब्द कहां गायब हो गया, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, उनको ही पता नहीं क्या बोल रहे। सात हजार लोग देख करके प्रभावित होकर कृष्ण मंत्र गान कर रहे थे, वो एक टक देख रहे थे। ऐसे लोगों को भक्ति प्रदान करके, कृष्ण भक्ति प्रदान करके महाप्रभु ने आते थे मध्यान्ह भोजन करने के बाद। फिर प्रतिदिन सत्संग होता था, महाप्रभु वक्ता होते थे, बहुत लोग श्रोता होते थे। इस प्रकार प्रतिदिन नित्य प्रति रंग क्षेत्र में जाते थे मंदिर में, खूब नित्य कीर्तन करके फिर आते, दोपहर तक तो कोई प्रोग्राम था। तो एक बार उन्होंने इस रंग क्षेत्र में जाते समय देखे एक ब्राह्मण बेचारा बैठा है, अनेक ब्राह्मण आते हैं, वो आकर के दंडवत करके आ जाता है, थोड़े दूर में मंदिर में एक बरंडा के ऊपर बैठ जाता है, बैठ करके अपनी पोथी निकाल करके पढ़ता है। गीता का पोथी था पुराना, पहले जमाने तो बुक्स नहीं था, जो भी पोथी था उसको, तो उसको पढ़ रहा था। और लोग बहुत जाते थे रास्ता में, रास्ते साइड में बैठा था, जा करके उसको क्रिटिसाइज करते थे, पंडित पढ़ना नहीं आता, पढ़ रहा है, और सचमुच उसको पढ़ना ही नहीं आता था, उल्टा सुल्टा उच्चारण गलत ऐसे करके पढ़ता था बेचारा, लेकिन पढ़ता था। लोग उनको कितने थट्टा करते थे, प्रयास करते थे, हंसते थे, लेकिन ये किसी को केयर नहीं करता था, कोई नहीं देखता, जो मर्जी कहो वो केयर सो अपना पढ़ता था अपने। तो महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, नजर देखते थे, बोले सारे लोग उनको प्रयास करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन किसी को ध्यान नहीं देता, बैठ कर पढ़ता है। लेकिन एक बात महाप्रभु मार्क करते थे, जो पढ़ता है बैठ जाता है अपना, वो गलत तो पढ़ता है महाप्रभु देखते थे, पढ़ना नहीं आता, गलत शुद्ध अशुद्ध उच्चारण कर पढ़ता, लेकिन पढ़ते समय में आंख से आंसू बहता है उसका और शरीर रोमांचित हो जाता है, बिल्कुल ऐसे होकर के नाच कंप पुलक होकर के पढ़ता। उनको मार करते थे, हो क्या रहा है उसको, पागल तो नहीं है, 4 महीना रहे, कई दिन एकाध महीना तो मार किए, बोले कुछ गड़बड़ी होगा, मेंटल है कि कोई गड़बड़ी कोई मारी है कुछ है, लेकिन महीना दिन देखे ठीक समय में आ जाएगा, ठीक उसी समय में आएगा, प्रति समय में आकर के प्रणाम कर बैठ जाएगा, किसी को ध्यान नहीं, दुनिया भाड़ में जाए अपना पढ़े, आपने रोता धोता कंपन अपना चल रहा है और पढ़ रहा है घंटा भर अपना दूरदानी घंटा अपना काम करेगा, 12 बजे तो जाएगा, 9 बजे आ जाता था, 12 बजे तक वो ड्रामा चलता था और लोग कई कितने कहे किसी पर किसी को ध्यान नहीं देता था वो अपना करता था। महाप्रभु बार बार लगे क्या है लोग इतने उनको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे, पढ़ना भी नहीं आता मैं देख रहा हूँ उसको, लेकिन ये क्यों कर रहा है नाटक। महाप्रभु का मन में बहुत उत्साह हुआ। एक दिन जाते समय उनको पूछे, बोले हे ब्राह्मण देव एक बात पूछूं पुराना मन है ना, बताइए ना, मैं देख रहा हूं आप गीता पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना तो आता नहीं आपको, अशुद्ध भाव से इसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके विकार होता है शारीरिक, आंख से आंसू बहना, कंप मूर्छ, ये सब ये क्या है, ये किस लिए, क्या कारण है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ब्राह्मण ने ये उत्तर दिया, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी। ब्राह्मण ने कहा प्रभु जी मैं मूर्ख हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा नहीं फिर पढ़ता क्यों है, क्यों पढ़ता प्रश्न उठेगा। बोले कोई शब्द होता अर्थ नहीं आता है, लोग बोली में इधर उधर थोड़ा सुना वही चलाता हूं गाड़ी, आप क्यों पढ़ता है ना, इसी प्रकार अच्छे बुरे शुद्ध अशुद्ध किताब पढ़ता हूं, गुरु आज्ञा मानी। देखिए यहां एक ध्वनि अर्थ निकलता है, कभी कभी हम सोचते हैं गुरु जी का तो कम से कम यह कर्तव्य होना चाहिए कि शिष्य की योग्यता देख करके उनको काम नियुक्त करे, पता होना चाहिए, यस यू शुड सी अवर क्वालिफिकेशन एंड देन एंगेज अस। लेकिन ये गुरु जी ऐसे थे, जानते थे नंबर वन अंगूठे छाप, उसके बोले गीता पढ़ो, जिनका अच्छा खासे ग्रेजुएशन का दांत निकल जाता है गीता पढ़ने में, हाँ ये उनको बोला दी गीता पढ़ो वो तो जो गीता विचार किए नहीं, बोल दिए तो पढ़ो गीता जा, अरे क्यों गोपाल जी पूजा करने के लिए बोल देते है ना, नहीं लड्डू गोपाल ले लो घर में रखो करो अपना नाटक अब और कुछ करे बोल देते, नाम कीर्तन करो, हम कुछ नहीं गीता पढ़ने के लिए, ये गीता पढ़ने के योग्य था लेकिन उनको बोल दिए, लेकिन वो भी मान लिया उसको गुरु जी ने, मुझे बोले मैं क्या करूं, मेरा यद्यपि आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरी योग्यता नहीं किताब पढ़ने, बाकी काम तो मैं कर भी सकता था लेकिन वो काम तो नहीं दिए, जो काम के वो लायक नहीं उसी काम गुरु जी ने मुझे बोल दिया, अब क्या करूं, गुरु जी के साथ युक्ति नहीं किया, गुरु जी के बात को हूबहू आज इट ही स्वीकार कर लिया, करके आया और गीता के पोथी लाया, अब बैठ कर बोला ठाकुर जी के सामने पढ़ूंगा, अब पढ़ना तो आता ही नहीं, जो आता लोग थटा थमसा भले कुछ उनको गाली दे कुछ मजाक करे परिहास करे किसी को ध्यान नहीं देता था, अपना पढ़ता था गलत सर, अरे पढ़ाने पड़ता था, लेकिन तू यही बात महाप्रभु बोला, बोला मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ लेकिन गुरु जी मुझे आज्ञा दी है पढ़ने के लिए, बोले गुरु जी तुझे बोल दे गीता पढ़ने के लिए, हाँ पढ़े बोले बोले मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, बोले लेकिन ये पढ़ रहा तो है गुरु जी की आज्ञा मान करके, ठीक मानता हूँ गुरु जी की आज्ञा बड़े निष्ठा है, लेकिन ये नाटक क्यों कर रहा है, रोना धोना है सब पुलक कंप क्या है, बोले क्या बताऊं गुरु जी तो पढ़ मुझे बोल दिया गीता पढ़ने के लिए, गीता तो मुझे समझना शब्द अर्थ कुछ नहीं जानता हूँ, गीता अर्थ समझ जानता नहीं, लेकिन जब गीता हाथ में लेकर पढ़ता हूँ मेरा मन में ही भाव आता है, आजकल सिना हमारा भगवद गीता आज ही जिसका ना छापा है बिल्कुल ऊपर में अर्जुन और अर्थ सारथी का पिक्चर प्रिंट आउट बढ़िया कलर प्रिंट है, अंदर में कलर प्रिंटेड है, तभी जमाना तो बुक्स ही नहीं था, एक भोजपत्र और तालपत्र की पोथी में कहाँ से कलर प्रिंट आएगा, कुछ पिक्चर फिक्चर भी था हुआ नहीं होगा, कोई पिक्चर भी था ना जिसको देख करके पुलक का कंप आया, वो भी नहीं था, लेकिन बोले फिर क्यों, बोले तुम्हारा मन में ये भाव आता है कि देखो ये गीता है, गीता जी क्या है ना, भगवान कृष्ण के अर्जुन के प्रति हितोपदेश है, अब कैसे हितोपदेश दिए, बोले मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण बड़े सांवले सलोने वो ड्राइवर बने थे रज्जुधर, ड्राइवर बनकर के स्टेरिंग पकड़ करके मैंने घोड़े गाड़ी का घोड़े का लगाम पकड़ करके ये हाथ में चाबुक पकड़ कर चला रहे थे, उसी में अर्जुन को मोह हो गया, वो ही खड़े खड़े युद्ध के मैदान पर गाड़ी के लगाम और चाबुक लिए हुए स्टेरिंग लिए हुए ड्राइवर सीट में खड़े खड़े उनको कुछ बताते हैं उपदेश देते हैं, ओ प्रभु इस प्रकार उनको उपदेश देते हैं, साक्षात परमेश्वर भगवान है। ये आपने भक्त अर्जुन के लिए एक ड्राइवर बन गए, और ड्राइवर बनकर भी कोई छोटे नहीं हो गए, छोटे पोस्ट, छोटे पोजीशन, छोटे काम करने लगे, किसी का ड्राइवर बन करके ओबीडियंट ड्राइवर, बोला ले चलो रथ में सार लेता हूं, ऐसा ओबीडियंट ड्राइवर बनकर भी अभी अर्जुन के जब फंस गया, मोह में फंसित हो गया, तो उनको भी ज्ञान के उपदेश देते हैं। और ड्राइवर होने पर भी मेरे प्रभु तो प्रभु है, भगवान है, इसलिए उपदेश दे रहे हैं। कितने कृपालु हैं मेरे भगवान, भक्त के लिए क्या क्या नहीं करना कि राजी हो जाते हैं। इस बात को मैं सोचता हूं तो मेरे आंख के सामने भगवान के ये रूप झलक आता है, भगवान के सांवले सलोने रूप, हाथ में रज्जु लिए और एक हाथ में चाबुक लिए और पीछे मोड़ करके अर्जुन को मुंह करके उनको उपदेश देते हुए, ये जो श्रीमूर्ति को मैं शिव ग्रह को देखता हूं, और अर्जुन हाथ जोड़ करके मालिक है, गाड़ी मालिक है, वो हाथ जोड़ करके सुन रहा है और प्रभु जी ड्राइवर बनकर उनको समझा रहे हैं। बोले ये जो झलक के रूप को मेरे मन में आता है, मैं देखता हूं, तब तो मेरे अश्रु कंप पुलक रहा है, यही होता है। और बाकी ये तो मैं गीता पिता नहीं जानता था, गुरु जी ने बोल दिए, पढ़ते पढ़ते मेरे यही भाव आता, इसी को देख कर बस गीता नहीं छूटता मेरे से, डेली डेली पढ़ता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता लेकिन यही भाव आता है, तो खूब रोता हूँ, देखो प्रभु के कितने कृपालुता, कितने भक्त वत्सलता है, उदार है, कितने ड्राइवर बनकर के उधार करते हैं, उपदेश दे रहे हैं उनको, ये भाव जो सोचता हूँ, इस प्रकार अश्रु कंप पुलक मेरा होता है, और इसलिए प्रतिदिन मैं इसको करता हूँ, ये आनंद मुझे प्राप्त होता है। तो इस बात को सुन करके महाप्रभु उनको आलिंगन के लिए धन्य है तू, सचमुच ये जितने बड़े बड़े व्याकरणिक पंडित है, सब उपाध्याय है, मिश्र आचार्य भट्टाचार्य, ये सब गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ने का अधिकार उनका है, एकमात्र गीता पढ़ने का अधिकार आपका ही है। ये कौन बोल रहा है ये बात? गीता बोलने वाले ठाकुर स्वयं, और कोई नहीं है, महाप्रभु थे कौन? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही तो थे, वही बोले थे, वही अपना बात देख रहे हैं कि कौन समझने वाला है। देखिए इससे प्रमाणित होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान विद्वता शुद्ध आचरण कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने इसी बात को बोलते हैं, एक पॉइंट से भगवान को आकर्षित कर लिया, भगवान जाते आते उनके ओर देखे, आकर खड़े रहे, सुने, पूछे और आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, एक अनपढ़ गवार जिनको सारे पब्लिक क्रिटिसाइज करते हैं, रोड छाप मान करके, अंगूठी छाप मान करके, भगवान को आकर्षित कर लिया इस मूर्खता के कारण। क्या विशेषता था? जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा, बोलते हैं उनका अपने गुरुजी के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास था। गुरुजी ने बोल दिया गीता पढ़ो, हमें महामूर्ख पढ़ना नहीं आता लेकिन पढ़ूंगा, प्रभु जी ने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया तो क्या, अब लेकर गलत सलत जो भी चला रखा गाड़ी अपना चलाता, कुछ नहीं समझ पाता, बोलता है कि शब्दार्थ ना जानी, मैं नहीं जानता हूं कुछ, और गलत भी पढ़ता हूं, शुद्ध अशुद्ध पाठ करी, गुरु आज्ञा मानी, लेकिन गुरु की आज्ञा के बलवान, उसी को भरोसा करके पढ़ता हूं। तो इसीलिए एक और अर्थ उसमें निकलता है, अगर गुरुजी ने आपको कुछ आज्ञा दिए काम करने के लिए, जिस काम के लायक आप है ही नहीं, बिल्कुल फिट नहीं, तो इस आज्ञा को अगर श्रद्धा से आप ग्रहण करते हैं तो इस आज्ञा का पालन करने का शक्ति भी उस आज्ञा में आएगा। गुरुजी के आदेश के साथ साथ उस आदेश पालन करने का सामर्थ्य और शक्ति भी उसके साथ निहित होकर आता है, लेकिन वो तभी होगा जब हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेंगे, तब शक्ति भी उसी से प्राप्त होगा, हाँ उसी शक्ति मिलेगा और इसी से ही सफलता प्राप्त होगा। सारे जो ग्रंथ है, गुह्य अर्थ है उसका, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। हम प्रतिदिन गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा में एक लाइन हम गाते हैं, ये सब दिव्य ज्ञान है ना, ये भौतिक ज्ञान थोड़ी है। हम डेली पढ़ते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान क्या है? हृदय प्रकाश होता है ना, पढ़ करके मेमोराइज करते हैं, लिखता हूं, परीक्षा देता हूं, नंबर लेता हूं, कुछ करता हूं, नहीं पता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक हृदय में है, वही में प्रकट होगा, वो है ऑलरेडी देर, उसको कुछ ला करके डालना, डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना है ना, वो ऑलरेडी है, यहीं पे प्रकाश हो, गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगा, हृदय में मैनिफेस्ट होगा। ये भौतिक ज्ञान का लिंक हेड के साथ, भेजा के साथ है, दिमाग के साथ, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का लिंक हार्ट के साथ। तेरा दिमाग खराब है, भौतिक टीचर जो गाली देगा नहीं पढ़ता है, दिमाग खराब है, कहाँ मानेगा, ये सब इसके साथ कनेक्ट। लेकिन दिव्य ज्ञान का उसमें कोई कनेक्शन नहीं, वो तो सीधा हार्ट में डाउनलोड, वो है ऑलरेडी डाउनलोड, क्या होगा, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो मैनिफेस्ट होगा बस। केवल श्रद्धा विश्वास के साथ आप गुरु आज्ञा पालन करने से वो मैनिफेस्ट हो जाता है, ये प्रकट प्रमाण। अब चाहे आपका क्षमता हो या ना हो, अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्व के साथ विश्वास साथ करते हैं और करते हैं, लोग आप क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, गाली दे, बोले काहे के बेकार कर रहे, क्या होगा उसमें, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में है शक्ति नहीं थे और इसी में सफलता नहीं थे, इसी को देख करके भगवान आकर्षित हुए और उनको कृपा की और बोले भी, बोले गीता पढ़ने का एकमात्र अधिकार तो आप ही समझ रहे, गीता को बाकी कोई नहीं समझे, ना समझ पाए। तो गीता को समझने के लिए गीता के शब्दार्थ का जानना जरूरी नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं आप देखेंगे, वो दूसरे दूसरे जो पंडित लिखे श्लोक अर्थ से किसी प्रकार, वो बिल्कुल अलग प्रकार लिख रहे हैं, क्यों, ये क्या है, प्रभुपाद जी के परपट को हम क्या कहते हैं, वो भावार्थ, ये शब्दार्थ नहीं है, ये भाव के अर्थ है। आप बोलेंगे प्रभुपाद जी कैसे पता चल गया भगवान के भाव क्या है, कैसे पता चला, हाउ डू यू नो, प्रश्न मन का प्रश्न उठेगा ना, कैसे पता चलेगा उनको भाव को लिख, कृष्ण के मन में क्या है उनको कैसे पता चला भाई लिखे उसमें उनके भाव को। तो उसका उत्तर यह है कि भाव ऑटोमेटिक जान जाएंगे, कैसे जान पाए, यहाँ पे बहुत सारे माताएं हैं पतिव्रता जो विवाहित हैं, कोई विवाहित पत्नी का ये उनके लिए आवश्यकता है कि पति के भाव को जाने, क्यों उनको प्रेम करती है, प्रेम के कारण जिसको जो प्रेम करता है उनके भाव को समझ लेना है, नहीं तो प्रेम की जाए, पति पत्नी के बात को जान ले, पत्नी पति की बात को जान ले, ये केवल प्रेम के कारण प्रकट हो जाता है, बिल्कुल जानते हैं वो मन में क्या सोचते हैं क्या कर रहे हैं अच्छी तरह से, सपोज टू वो जानना चाहिए, अगर सही पत्नी प्रेम का ही प्रभाव जानने का भाव। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा के एक प्योर लवर था, तो इस कारण से कृष्ण के भाव जानते थे, उनके भाव को कृष्ण समझते थे, उनके भाव को वो समझते, तो इसलिए कृष्ण को कोई ऐसे प्रेम करे तो वो भी कृष्ण के भाव को समझ सकेगा। बोले कृष्ण को बहुत दूर बात हम नहीं कर सके, आपके सामने आपके गुरु जी तो है, उनको प्रेम करो, उनके भाव को समझ लो, इनडायरेक्टली कृष्ण से कनेक्टेड हो गए, समझ लो उनके भाव, दो ही एजेंसी है ट्रांसफार्मर पावर हाउस, एक पावर हाउस एक ट्रांसफार्मर, कहीं से कनेक्ट हो फ्लो आएगा, करंट आ जाएगा। इसलिए बोलते जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, देव मतलब कृष्ण, उनमें भी और गुरु में भी अगर सेम कनेक्शन फिट हो गया किसी में एक में तो आएगा, और वो पावर हाउस तक हमारा पहुंच नहीं है लेकिन भाया मीडिया में चलेगा, वो भी काम, वही सेम थिंग है, सेम थिंग है। और इसी से जो अति अद्भुत आश्चर्य जो असंभव संभव होता है, अनपढ़ गवार है उसको भगवान साक्षात गीता के वक्ता बोलता है कि तू ही गीता समझाए और बाकी तो कोई नहीं समझे, बड़े बड़े टीकाकार हैं बोले ना वो कहां समझे, तू ही समझा, क्यों, तू अशुद्ध पाठ कर रहा है, उच्चारण भी करना नहीं आता, तू गीता को समझ गया। ये इसी को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लास्ट लाइन लिखते हैं, भक्ति के सफलता की रहस्य क्या है, मैंने पढ़ के सुना उसने तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में, भक्ति के सफलता के रहस्य, दूसरे शब्द में कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। सीक्रेट, इसी में सीक्रेट। अब गुरु जी के कृपा से कैसा असंभव भी संभव हो सकता है, ऐसे अनेक अनेक उपमा उदाहरण शास्त्र में भरा पड़ा है। मेरा एक कथा याद आता है महाभारत में, आदि पर्व में है, बड़े प्रसिद्ध कथा आप सब जानते होंगे। एक ऋषि थे जिनका नाम था अयोध्धम्य, धम्य ऋषि करके जानते थे, उनका नाम था पूर्ण अयोध्धम्य। उनके गुरुकुल था, तभी जमाने पुराने जमाने में तो इतने ज्यादा स्कूल नहीं, आजकल जैसे बिजनेस हो गया एजुकेशन, तभी ऐसा था नहीं, तो गुरुकुल होता था, गुरु जी लोग अपने कुल चलाते थे, गुरु गुरु माता रहते थे, अपना करते थे, और जिनको एडमिशन कराना होगा स्कूल में पढ़ाना होगा तो एंट्रेंस वेंट्रांस नहीं देता होना, एंट्रेंस था लेकिन अलग एंट्रेंस में बताऊंगा क्या एंट्रेंस था, और फीस पहले नहीं देना होगा, पहले 2 लाख जमा करो फिर हो जाए, इसे नहीं, आपको लेकर के उनके आवश्यकता अनुसार दाखिल करना पड़ेगा, वही का पेन पेपर था नहीं, वही अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। देखो आप जो लोग पढ़ाना है तो गुरुकुल में छोड़ के जाओ, फिर मेरे पास छोड़ के जाओ। 15-20 साल तक तब जो फोन भी थे नहीं कि कोई मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं, इलेक्ट्रिक था नहीं, तो नो कनेक्शन। 15-20 साल तक आप घर में जाओ मेरे पास छोड़ दो, अब 20 साल के बाद मैं उसको स्नातक करके पक्का करके छोड़ दूंगा, उस समय अगर कुछ देना है तो फीस दे देना, नहीं तो नहीं, ये अग्रीमेंट होता था। और उनके पास गुरु जी के पास माँ बाप छोड़कर जाते थे, फिर ना के फोन ना फान ना फिर मिलना, वो तो कहां कहीं छोड़कर आएंगे, बस वो होता था ब्रह्मचर्य गुरुकुल वसंती दांतर गुरु हितम, उस गुरुकुल में छोड़कर आना पड़ता। तो इसलिए उनके अनेक शिष्य थे गुरुकुल में, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उनके पास शिष्य जो पढ़ना वाले होते हैं, इवन राजपुत्र आदि भी सो जाते थे पढ़ने के, जिसको पढ़ना होगा जाना पड़ेगा गुरुकुल में, एक ही होता था स्कूल, ऐसे सिस्टम। तो उनके 3 शिष्यों का नाम महाभारत में दिया गया है जो प्रमुख थे, उन्होंने पढ़ लिख करने कृपा सिद्ध माना गया उनको, क्या थे वो कृपा सिद्ध, कृपा के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो गया उनका। उनमें से एक का नाम में चर्चा करेंगे, एक के बारे में, जिनका नाम था उपमन्यु। क्या नाम था? उपमन्यु। अब गुरुकुल में जो एडमिशन का एज था वो 5+ में करते थे, 5 से नीचे नहीं लेते थे, 5+ हो गया तब फिर आप फॉर्म फॉर्म तो फिल्म करना लेकर जाओ, लाकर एग्रीमेंट के साथ गुरुजी के पास छोड़कर आओ, गुरुजी के पर पूर्ण समर्पण, बस गुरुजी जैसे करेंगे जो करेंगे आपको तो फोन पता ही नहीं करेंगे, ना बात हो पाएगा ना मिले आएंगे, देखा कोई नहीं, जाओ उनकी इतनी दूर से छोड़कर आ जाओ। तो बेटा उपमन्यु छोटा सा, अभी 5 साल पूरा ही हुआ था, 5 साल पूरा हुआ था, देखने में बड़ा गुलशन चेहरा था, बड़े सुंदर बालक था, उसको उनके पिताजी ने अधम्य ऋषि के पास छोड़ करके आकर बोले गुरु जी आपके आप छोड़कर जा रहा हूँ आपके भरोसे में आप कीजिए, गुरु जी स्वीकार किए उसको, ब्राह्मण के बालक था, बोले बेटा ठीक है स्वीकार किया, लेकिन आज से तेरा शुरू होगा, पहले तो पाठ शुरू नहीं होता, पहले आपका परीक्षा शुरू होता है, पहले परीक्षा के बाद पढ़ाना होता है, आजकल पढ़ाने के बाद परीक्षा होता है, तो वो परीक्षा क्या, वो एंट्रेंस होता है उनका, दूसरे एंट्रेंस क्या है, हर एक स्टूडेंट को गुरुजी ने ऐसे ही लेते हैं, अपना अपना तरीका से परीक्षा लेते हैं। क्या पिताजी छोड़कर चले गए उस दिन रखे, उस दिन शायद पिताजी के साथ में कुछ भजन पूजन किया होगा, चले गए, दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुजी ने बुलाए, सुबह मॉर्निंग को बोले देखो बेटा उपमन्यु, आपको ये लोग जो नए नए आए हैं ना PBT जितने हैं वो सब जा रहे हैं भिक्षा करने, आप उनके साथ ये झोली पकड़ो अब जाओ, आपके ये गांव है, ये गांव को और कोई नहीं जाएगा, ये गांव आपके रजिस्टर कर आपके हैं, इस गांव में जाकर भिक्षा करके आओ। और याद रखना भिक्षा का नियम ही होता है किसी के घर से दोबारा नहीं मांगना, दूसरे किसी गांव जिसका है मांगने का उनके गांव में नहीं जाना, आपके एरिया में जाना, दोबारा नहीं मांगना, और जो भिक्षा में प्राप्त हुआ एक दाना भी इधर उधर नहीं करना, सारे गुरु जी को ला कर जमा देना मेरे पास देना देकर, और कुछ नहीं बोले, इतना आदेश दिए। सुबह सुबह अपना मंगल आरती के बाद आप झोला उठाकर चला, जो एरिया था बता दे, उन साथ में बोले ये के तेरे गांव में चले गए। पहली बार जीवन में भिक्षा मांगने गया हम लोग, तो आप हम तो भिक्षा मांगे प्रैक्टिस तो नहीं है, एक बार दीक्षा के समय गुरुजी ने बोलते वो भी आपने अपने लोग जो है दे दो ना 200 रुपये, क्या करें फोन करके बुलाते भेज दो ना, ऐसे भिक्षा मांगा। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल अनजान अनपहचान ऐसे गांव में भेज दिए जाओ, गांव वाले सुबह सुबह कौन सा चेक रखें दे देंगे आपको। और भिक्षा तभी होता था, भिक्षा मुट्ठी जो घर में जो अनाज होता था ना, पैसा तो होता नहीं था क्योंकि करेंसी था नहीं, गोल्ड कॉइन भी कौन दे, तो अनाज देते थे घर में जो होता था, अनाज की मुट्ठी देते थे, वो आएगा तो एक मुट्ठी अनाज दे दे। तो हर एक घर में अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग कलर, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज की होता, तो हर प्रकार से विभिन्न मिक्सचर ब्रेड लेता था, लेकर आते थे सब, जो भी जितना होता था गांव में सारे लाते थे, किसी का 2 किलो, किसी का 5 किलो, किसी का आधा किलो, किसी का किलो, जो जिसका हुआ इतना मांगने के हिसाब से वो लाके गुरु जी के पास जमा देते थे। तो उपमन्यु गया तो अपना गांव में जा करके, पहले तो इतनी शर्म लगता था, मांगना नहीं आता था, जाकर खड़ा रहता था, मानना नहीं आता था। वो गृह पत्नी घर में आते, बोले बेटा शायद आया है ब्रह्मचर्य भिक्षा मांगने, लेकिन बेचारा बहुत नया है, मांगना नहीं आता। तो आपने बोलते बेटा ठीक है ले लो बेटा, वो दे देते थे आपने आप। तो सोचता था चलो बिना मांगे मिल जाता, सबका घर में जाकर खड़ा होता था, हाथ पता करके, झोली पता करके, कोई देते थे कोई नहीं देते थे, ऐसे करके आप कम से कम 1.5-2 किलो कर लिया करके गांव पर तो वापस आ रहा था। अब छोटा बालक है, सुबह सुबह खाया नहीं, बालक है ना छोटे, तो 6 बजे उठकर ही खाना शुरू कर देते हैं, फिर 8 बजे और एक बार, है ना, 6 टाइम तो खाते ही है। तो बेचारा भूख तो लगता है, और गुरुजी ने खाने पीने का कोई बताया नहीं, कोई उपाय, कोई कोई में से कुछ नहीं व्यवस्था की। पिताजी तो चले गए, तभी जमाने में कुछ देकर गए, पासबुक क्या कुछ कार्ड बोलते हैं उसको, ATM डेबिट कार्ड के कुछ था नहीं, क्या करे बेचारे ना, इधर कोई भी दुकान बाजार होता था। तो बेचारा वापस आया, सब रास्ता में और भी साथी मिले, बोले चलो वो किसी को पूछा होगा, बोला भोजन का क्या व्यवस्था है, पहली बार आया ना आज, सेकंड डे, बोले गुरुकुल में प्रसादन है, प्रसाद हलो 9 बजे प्रसाद मिलेगा, अब चलो भिक्षा जमा करके जाना, लेकिन क्या नियम पता है ना, गुरु जी जिसको बोलेंगे वही प्रसाद मिलेगा, उनको बासी तो मिल नहीं सकता। अच्छा, तो गुरु जी बोलेंगे, वो आशा क्या था, गुरु जी नहीं बोलेंगे उसको। तो जाकर के सभी ने अपना अपना भिक्षा जमा दिए, वो भी जाकर अपना जो 2 किलो इकट्ठा किया था जाकर गुरु जी पास जमा दिया, जमा देकर खड़े रहा। गुरु जी सबको बोल दिए जाओ प्रसाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, उनको नहीं बोले, सब चले गए खाक रहे, देखे देख कर ऐसे कर रहा है यार क्यों, उनका सामने सब जाए खा के आ रहे हैं, उसको बोलते नहीं गुरु। बहुत देर खड़ा रहा, गुरु जी बोले बेटा उपमन्यु ऐसा करो, आप जाओ, समय हो रहा है, गौशाला जाओ, गाय लेकर के चरवाना, तेरा ये सेवा, जाओ गाय चरा। और थोड़ा खड़ा रहा, अरे तू बोला ना जाओ करके, वो सोचा शायद खाने के लिए बोलेंगे, बोले नहीं, बोले जाओ जल्दी जाओ लेट हो रहा। गया जा करके गाय खोल कर, गाय तो हो चुका था, धो लिए थे, गाय खोल करके लेकर गया चराने के लिए। अब भूख तो लग ही रहा था, जैसे भी सोच रहा था, बोला क्या करूं, शायद दोपहर को मिलेगा, ब्रेकफास्ट मेरा नहीं है, शायद दोपहर को लंच देंगे, शायद दोपहर को काहे को लंच, कुछ नहीं। गाय चराने गया, चराते चराते वापस आया शाम को, बोला चलो डिनर तो हो जाएगा, डिनर भी नहीं, जैसे गाय चरा के गुरुजी के पास फिर जाकर खड़ा रहा, प्रणाम किया, गुरुजी बोले गाय सब आ गए ठीक ठाक है ना, ठीक, कोई बात नहीं बेटा विश्राम करो। खाने के लिए नहीं पूछे, पेट में हाथ लगा लगा करके जा करके सोया, पानी पी कर, और क्या करेगा। अब हो गया उस दिन तो सजला उपवास, अब दूसरे दिन उठ करके बिल्कुल मॉर्निंग प्रोग्राम में ही मंदा पड़ गया था, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम तो गुरुजी ने बोले उपमन्यु बेटा जाओ, सब जा रहे, तब भी कुछ व्यवस्था खाने के लिए नहीं कहे। अब झोला लेकर के गया, साथियों से पूछा, बोला क्या भाई कुछ बोलते नहीं, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बोला हम नहीं जानते हैं, गुरुजी के ऊपर बात है, खाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जिसको बोलते हैं उसको ही मिलता है, आप पता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते बाबा। बोला कोई मदद नहीं कर रहे, पिताजी भी साथ नहीं, मैया भी नहीं, पापा भी नहीं, क्या करूं, कोई नहीं, भूख तो सताता है, बड़ा प्रबल था, जाके भिक्षा मांगा, इस भूख के व्याकुलता का कारण मांग रहा था, जो देते थे वो भी बोलते बेटा ले लो, वो भी कुछ देते थे, उस दिन थोड़ा ज्यादा दिए, और भी कुछ ज्यादा घर से मांग लिया उन्होंने, अब 2 किलो मांगा था कुछ और, थोड़ा 250-300 ग्राम ज्यादा हो गया उसका। तो आ करके कुछ साथी लोग आने से पहले एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके खा गया 250-300 ग्राम कच्चा चावल, भूख संभाल नहीं गया, संभाला नहीं गया, मुख में मुठा मुठा कर डालकर चूहा चो वगैरह खा गया, साइड में वो पानी के नाल से पी गया, लो बच गया, नहीं तो चला नहीं जाता मेरे सब। तब साथी लोग कहा चला, किसी को बताने चुपचाप आया, आ करके भी कह दिया, बोला शायद फिर आज बोलेंगे, आज भी नहीं बोले। बोले भाई 3 दिन तक उसको नहीं बोले, वो बेचारा अपना रास्ता निकाल लिया था, कच्चा चावल चुबाता था, डेली 250 ग्राम चुबा लेता था, इससे गाड़ी चलता था। दिन भर में एक बार सुबह से वो जब भिक्षा से आता था, कोई पकाया हुआ चावल नहीं, कच्चा चावल अलग अलग प्रकार कलर के, अलग अलग प्रकार साइज के, उसी को चुबा करके पानी पी लेता था। 1 टाइम इन ए डे वो गाय चराता था, दिन भर फिर आता था। 3 दिन तक तो हाल खराब होता, बोला 3 दिन के बाद फिर बोलेंगे। एक दिन तीसरा दिन में गुरुजी बोला, बोले बेटा उपमन्यु इधर आओ। बोला शायद गुरुजी ने कुछ खाने की व्यवस्था करेंगे। बोले उपमन्यु बेटा मैं देख रहा हूँ, तो जिस दिन आया था जिस तरह तरह डोल डाउल चेहरा था गुलशन, अभी भी देखता हूँ ऐसा ही है, कुछ घटबड़ नहीं देखता, लगता है तो कुछ खा रहा है। मैं तुझे खाने का आदेश तो नहीं दिया ना गुरुजी, आप तो आदेश प्रसाद हॉल में नहीं जा रहा, नहीं प्रसाद हॉल में एंट्री नहीं किया, अरे तो मुझे पता है तू जाने पर तुझे नहीं देंगे वो लोग, लेकिन तू क्या खा रहा है, तू खा क्या रहा है ना गुरुजी, प्रसाद तो नहीं खा रहा ना, ये तो मुझे पता है तू क्या खा रहा है बताओ ना गुरुजी। क्या बताऊं आप, बोले नहीं बहुत भूख लग रहा था, और जो भिक्षा करके चावल लाता हूं ना उससे कई मुठा खा लेता हूं, बाकी तो आपको देता हूं खा लेता हूं बैठ कर। अरे जो भिक्षा अपन करता है इस भिक्षा में अधिकार मेरा है, आपका नहीं, आप कैसे खा लिया, इस गांव के जो मैं दिया हूं, इस गांव के जो भी भिक्षा है, ये जो भिक्षा सारे मुझे देना है, जितना भिक्षा होता है सारे मुझे देना है, ये आप गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ना गुरु जी पता नहीं था, कान पकड़ता हूं, माफ कर दीजिए और नहीं करूंगा। बोला माफी मांग लिया, शायद आज खाने दे देंगे। गुरुजी बहुत भूख लग रहा था, संभला नहीं गया इसलिए खा लिया था, अब माफी मांगना और नहीं करूंगा। बोले बेटा ठीक है, अब नहीं करना, जा जा। मैं कहूँ अरे आज भी नहीं खाने के लिए, अब गया मांग करके लाया, आज तो खाएगा नहीं, बिना खाए फास्टिंग में आया, आकर सारे के सारे दे दिया, खड़ा रहा पेट में हाथ लगा करके। गुरुजी बोले खड़ा कर जाओ, गाय लेके जाओ। बोला मर गया, अब क्या करूं। तब दूसरे दिन बोला ऐसे नहीं होंगे, मैं तो 2 किलो देता था, 2 किलो नाप कर लेंगे उन्होंने, काम तो नहीं होना चाहिए। तो दूसरे गांव में चला गया, उस दिन जो फास्टिंग रहा संभला नहीं गया, दूसरे साथी का जो गांव था वो आने के बाद खड़ा रहा, दोबारा उस गांव में चला गया, दूसरे गांव में जाकर जो लोग मांगे थे उनके गांव फिर जाकर मांगा। सोच जो गांव लोग थे बोले सोचे बेचारा बिल्कुल छोटा सा मासूम बालक है, अब पता नहीं लेट में आया सा दोबारा आ गया, दोबारा तो ऐसे नहीं आते ब्रह्मचारी कैसे आ गया, तो थोड़ा बहुत दिए। वो दोबारा जो भी 250-300 ग्राम इकट्ठा माना, वो जो मांगा था उसको तो बोला उसको नहीं ये करो गुरु जी मना की, तो वो जो एक्स्ट्रा और मांगा दूसरे के गांव से उसको बैठ कर खा कर गया। 2-3 दिन इससे काम चलाया। एक दिन गुरु जी बुलाए, बोले बेटा फिर भी कुछ खा रहा है लगता है ना। गुरु जी भिक्षा से नहीं खाता हूं, जो भिक्षा क्या सारे सारे आपको देता हूं, प्रसाद हल तो मनाइए, आप कुछ बोलते ही नहीं ना, वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ तो खा रहा है, नहीं तो चेहरा से पता चलता है कुछ खा रहा है। बोले गुरु जी ऐसा है, जो गांव से भिक्षा करता हूँ उसको तो दाना छूता नहीं, ना फिर ना दूसरे गांव से जाकर थोड़ा मांग लेता हूँ, और क्या करूँ संभला नहीं जाता। गुरु जी बोले ये गलत है, दूसरे गांव दूसरे का तुझे कैसे मांग रहा है, ये नहीं करना चाहता। गुरु जी कान पकड़ता हूँ, गलती हो गया और नहीं करूँगा, भारी भूख लग रहा है ना, पता है मुझे ऐसा नहीं करना। बोला शायद आज भी शायद खाने के लिए बोलेंगे, आज भी नहीं बोले। आओ तो भिक्षा करके खाने का रास्ता ही बंद, क्या करे खा ही नहीं सकता, अब इधर से खाना दे नहीं रहे। गाय लेकर के गया और चला नहीं जाता गाय चराने के लिए। बोला क्या करूं, अब गाय को दूध निकाल करके भेज देते हैं और फिर शाम को आते हैं फिर गाय दूध निकालते हैं, तो रहा नहीं जाता। जो दूध देने वाले गाय बछड़ा पी जाने के बाद भी थोड़े बहुत जाकर सारे गाय के थन से उनके स्तन से मुंह लगा करके चुचुम चुचुम करके कई गायों से थोड़ा वो जो दूध निकाल करके अपना उसी से करता था काम, उससे 2-3 दिन काम चलाया। एक दिन 3 दिन के बाद गुरु जी फिर बोले बेटा आप मन इधर आओ। बोले गुरु जी शायद कुछ व्यवस्था करेंगे, अब 15 दिन हो गया ऐसी चल रहा है गाड़ी। बोले बेटा कुछ तो खा रहा है लगता है। ना कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं था, दानव एक भी नहीं खा, तो फिर पी रहा है गुरुजी पानी तो पी रहा है ना, पानी तो पी रहा है उसके अलावा कुछ। मैं गुरुजी क्या बताऊं, भूख जाऊ बहुत लगा, संभला नहीं जाता। और गाय के स्तन से बछड़ा तो नहीं, ऐसे मुंह लगा करके, वो गाय भी ऐसे होते हैं, दे देते मुझे थोड़े थोड़े दूध, वो कई गांव से थोड़ा करके थोड़ा पी लेता हूँ दूध, इससे काम निकालता। बोले ऐसा नहीं है, ये दूध बछड़े के लिए बाहर से आ रहा है, उनके दूध आप नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं ठीक है, काम नहीं लूंगा और नहीं ऐसा पीऊंगा। बोले अब तो कुछ व्यवस्था करेंगे, तब भी नहीं किए, फिर एक सुखा दिन गया और फिर संभला नहीं गया। आप दूसरे दिन गया, बोला आप गुरु जी ने मना कर दिया, गाय से दूध पी नहीं सकता, गाय लेने से पहले उनका शक्ति नहीं होता था, कैसे गाय लेकर जाऊं, बछड़ा को अलग करके गाय लेने, समझ देखा कि बछड़ा से दूध पी पी करके मुंह में सारे दूध बड़े खुशी से कूदकते हैं कूदते हैं, मुंह में सारे फेन फेन लगा हुआ है। बोला गुरु जी ने तो मना किए दूध नहीं पीने, फेन के लिए तो मना नहीं किया ना, वो गाय को छोड़ दिया, सारे बछड़े के पास जाकर के जीवा में उनके मुंह से चाट चाट कर जो फेन दो साइड से सूंड चाट चाट कर खाया। कई बछड़े थे, सारे मुंह से जो फेन निकल रहा था पी पी करके, उस फेन को चाट छूट करके, बछड़े भी अच्छे थे, बोले बेचारा मासूम लड़का है थोड़ा व्याकुल होकर के चाट रहा है, लेने दे थोड़ा फेन चाट जा रहा है, और चाट चाट कर इसी में काम लगाया, दो तीन चलाया, दो तीन दिन फिर गुरु जी बोला बेटा अपमन्यु लगता है कि तू, नहीं गुरु जी कुछ नहीं, दूध नहीं पिया, बंद कर दे, नहीं पी रहा हूं, सच बताता हूं मैं दूध नहीं पी रहा, तो बताओ क्या कर रहा है। आप बताना पड़ा गुरु जी, ऐसे बछड़े जो पीने के बाद में जो उनका दूध का फेन है उसी को चाट जाता हूं। बोले नहीं वो बछड़ा चाटना चाहिए, आप कैसे चाटा, वो आपका नहीं है। हाँ गुरु जी गलती हो गया और नहीं करूंगा, भूख लग रहा है बहुत, मुझे पता है, पता है व्यवस्था होगा आपका, लेकिन आप अभी नहीं जा, जाओ गया लेकिन आप बोल दिए। उस दिन भी भूखा आया, शाम तक भी नहीं दिए, दूसरे दिन सुबह भी भिक्खा करके, भिक्खा नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, फेन भी नहीं चाट सकता, बोले जाओ नहीं दिए। 5 साल का लड़का था, अंदाज लगाओ, अगर आजकल का होते सीपीटी केस में उनका हाल खराब कर देते, लेकिन गुरु कृपा पाने के लिए ये सब आजकल के जो अंधाधुन कायन ये नहीं चल सकता, शास्त्रीय विधि यही है। इस प्रकार के तड़पाए उसको, बेचारा किन करते भी मूड हो गया, क्या करूं गुरु जी अब भी नहीं दे रहे, सबको मेरे सामने खिला रहा है, मैं सबसे छोटा जूनियर हूं, इतनी भूख लग रहा है, तड़प रहा हूं, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, मार पीट करके रोने धोने बोल दी, बोले जाओ गाय लेकर डांट दे, अब क्या करें। गया गाय के पीछे रो रो करके जा रहा था, क्या करूं मर जाऊं, कैसे क्या खाऊं, ये भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए, अपने ऊपर गाली दे रहा था, अपने पापा मुझे छोड़कर भी चला गया, अब क्या करूं। अब शाम तक तो जैसे जैसे गाली गुलस देख रहा, शाम जो गाय लेकर वापस आ रहा था, सहा नहीं गया, रहा नहीं गया हमसे। अब बोला आप दूध तो पी नहीं सकता हूं, किसी प्रकार से वो खाना घर कुछ है ही नहीं, क्या करूं, इतने भूख लग रहा था, बोला कुछ फल फूल खा जाता हूं, फल फूल तो जंगल में आजकल को फल के पेड़ है ही नहीं, कोई ऐसे है ही नहीं, कोई फल के पेड़ कहीं होगा 2 सिक्योरिटी बैठे होंगे हाथ नहीं लगाने देंगे। तो गाय लेकर आते समय कुछ पेड़ के पत्ता वाला खा जाऊं, इतनी भूख व्याकुल कर रहा था, सता रहा था, अब पता नहीं कौन सा पेड़ है क्या पत्ता, नोच नोच करके पत्ता खा गया चुआ चुआ करके, स्वाद को कौन पूछे, इतने भूख सता रहा था। लेकिन यह था किस प्रकार का पत्ता, कौन सा पत्ता था वो जानते ना, वो बिसेला, विष वृक्ष था, उसके पत्तल में विष होता है, और उस पत्ता को नोच करके खा गया। और उनको क्या पता, वो पत्ता का नाम है अक्वा, आख का पेड़ बोलता, अरख अरख, एक स्वेतर आख बोलता, आख 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 का पेड़ था, अब जानते हैं बड़े विषाक्त होता है, वो शिव जी को उनके फूल चढ़ता है तो दूध निकलता है उसको तोड़ने से, उस पत्ता को थोड़ा दूध निकलता, बोला ये तो भाई अच्छा है दूध निकलता है उसमें, अब क्या भूख के कारण वो पत्ता चबा कर खा गया, थोड़ा पत्ता चबा खाया, बड़ा डिस्ट्रेस था, बीज था वो, लेकिन भूख इतने प्रबल था, वो टेस्ट कौन पूछे, खा गया चबा कर कुछ। अब जब आ रहा था गाय के पूछे, विष की रिएक्शन किया प्रभाव से, छोटा सा बालक था, तुरंत विष एक्टिव हो गया, हो करके तुरंत उनका दोनों आंख दृष्टि शक्तिहीन हो गया, आंख फट गया दोनों, अब चलते चलते दिखाई नहीं पड़ा, आंख से दृष्टि शक्ति चला गया इसके प्रभाव से। अब चल रहा था, गाय कहां है, किधर चलते, हम खत्म, दृष्टि शक्ति गया, दोनों आंख गए। अब तो बेचारा क्या करें, ऐसे भूख से सता रहा था, ऊपर से अंधाई हो गया, गाय नहीं दिखते, गाय चिल्लाते, गाय तो अपने अभ्यास है, होता अपना आगे को सलाम। अब वो आ रहा था गाय के पीछे पीछे, पता नहीं जंगल में एक सूखा कुआं था गड्ढा, और पता दिखाने था कि गड्ढा में गिरा धुम करके, ये टांग थोड़ा, हाथ छिल गया, वो हो गया, नीचे गिरा धड़ाम, पता नहीं पत्थर में चोट मारा, सब सर टूटा, पर फ्रैक्चर, ये वो बुरी तरह से साइड से लग करके कट करके फट करके बुरी तरह से पड़ के इंजर्ड होकर के रो रहा था बेचारा, 5 प्लस की उम्र का बालक, इतने गुलछन चेहरा था, रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, निर्जन जंगल में सूखे कुएं के अंदर गिर करके वो रो रहा बेचारा। गाय चले गए, गुरुजी कर रहा है, कौन करे, भूख के मारे सता रहा है, और पूरे शारीरिक इतने पीड़ा। शाम हो गया, गाय सब घर में आ गए। अब गुरुजी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करते हैं, जो इस प्रकार परीक्षा लेता है वो हमेशा चुप करना रहता है। शाम हो गया, धूम में ऋषि पूछे, सारे बालक सब आ गए, गाय सब देखो गोशाला, धूम उपमन नहीं दिखाई नहीं पड़ता है ना गुरुजी, वो है नहीं, क्यों ना पता नहीं, गाय तो सब आ गए, जहाँ देख रहा सब गाय गाय ना सब आ गए, अब शाम अंधार हो गया, नहीं आ रहे, क्या हो गया। गुरुजी चिंतित हो गए, अब तब जमाने में तो टॉर्च लाइट भी था नहीं, कैसे जाऊं, बोले चलो उसको ढूंढना पड़ेगा, कुछ तकलीफ तो ना हुआ, टॉर्च था नहीं तो मसाल जानते ना, एक लकड़ी में कपड़ा बांध करके तेल डाल करके आग जला करके अंधार में रात्रि अंधकार में चले, वो इसमें कोई देखेगा रास्ता, इसमें क्या देखेगा, आग पकड़ करके मसाल में, और उनको कैसे ढूंढेंगे निर्जन जंगल में। एक ही उपाय था उनके सामने, आवाज निकाले, उपमन्यु बेटा उपमन्यु तू कहाँ है, ऐसे गुरुजी ने चिल्ला चिल्ला करके अपने कुछ शिष्यों के साथ सारे जंगल में भटकते रहे, जहां जहां गाय जा रहे थे उसी उसी क्षेत्र में रात सर चले, गुरुजी ने चलते रहे, चलते चलते आधी रात में उसी रास्ता पर गुजर रहे थे जहां पर एक कुआं था, जैसे गुरुजी का आवाज पड़ा उनके कान में तो उनको तो पीड़ा में छटपट रहा था कुएं के अंदर, जैसे गुरुजी का आवाज पड़ा बेटा उन्होंने करके उनका अंदर जोश आया, वहीं से पड़े पड़े शक्ति से उठा करके पूरे शक्ति लगा करके बोला रो रो करके, गुरुजी मैं ही पड़ा हूं कुआं के अंदर से, पूरी ताकत लगा बोला था, वो धीरे धीरे आवाज सुनाई पड़ा उनको, क्योंकि रात्रि में निस्तब्ध निर्जन जन प्रदेश में बिल्कुल वो आवाज टुकरा करके कुआं से प्रतिध्वनि आने लगा। धर्म ऋषि बोले बेटा तो जीवित तो है, कहीं तकलीफ में पड़ा है, कहां पड़ा है, वो ढूंढ ढूंढ कर देखा नहीं, वही आवाज है, बेटा तू कहां है, कैसे है, तो बोला गुरुजी पता नहीं, भूख के कारण मैं तो कुछ पेड़ का पत्ता खा लिया और मेरे आंख अंधा हो गया, फूट गया, और मैं कई गड्ढा से गिर गया हूँ, हाथ पैर टूट गया, सर फट गया, और क्या हुआ दिखाई नहीं पड़ता, बड़े तड़पता हूं, बड़े कष्ट हो रहा है गुरु जी, यहां पड़ा हूं पता नहीं क्या है। तो आवाज जहां से आ रहा था उसी ओर से चल चल करके देखे कि दिखाई नहीं पड़ता है घोर अंधकार, उसके नीचे से आवाज आ रहा है, चले गए वापस, रात भर छोड़ गए उनको वही तड़पते अवस्था में, चले गए जा करके, वो जाते समय में उनको एक मंत्र दी, बोले बेटा उपमन्यु ध्यान देकर सुनो, मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, तो वहीं से उसको मंत्र दिए, बोले मंत्र को सुनो उसी को जप करो, तो मंत्र सुना, कुएं के अंदर पड़ करके तड़प रहा था, मंत्र सुना, ऊपर से गुरुजी मंत्र बोले, तो मंत्र को सुन करके उन्हीं को जप करने लगा, गुरुजी चले गए, जप करते रहा करते रहा। दूसरे दिन अब लगभग दोपहर को अश्विनी कुमार आए, देवताओं के वैद्य, वो अश्विनी कुमार के बीज मंत्र, अश्विनी कुमार तो देवता है, सीधा कुएं के अंदर डाउन लैंडिंग की, लैंडिंग करके वो आए थे, एक मेडिसिन गुरु दिव्य फल लाए थे, बोले बेटा ये फल लो खा लो तू ठीक हो जाएगा, सुस्थ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फल हाथ में लिया, बड़े दिव्य सुगंध फल था, दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, हाथ में स्पर्श किया बड़े सुंदर था, उसका स्मेल ऐसे आ रहा था कि खा जाऊं, इतनी भूख था लेकिन खाया नहीं, बोले बेटा खा लो, बोला नहीं खाऊंगा, अरे तो ठीक हो जाएगा ना, मैं ठीक मैं डर रहा हूं नहीं खाऊंगा, ये क्यों ना, ये गलती कहा बिना गुरु जी के आज्ञा से खा करके ये हाल हुआ, अब तो नहीं खाऊंगा,
अरे तेरे गुरुजी के मंत्र हम ही है अश्विनी कुमार देववर्ती हम दे रहे ना, मुझे मुझे किसी पता, आई डोंट नो, मैं नहीं खाऊंगा। अब गुरुजी कहे भी ना तो खाऊंगा नहीं, मरी जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, बहुत हो गया मुझे सजा और नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार दवाई लेकर आए थे, समझा समझा कर थक गए, नहीं खाया नहीं लिया, उनको वापस आना पड़ा गुरुकुल में। आकर बोले तेरे चेला ऐसे खर्रा निकला, तू मंत्र दिया लेकिन मेडिसिन दवाई नहीं ले रहा। गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, धम्म ऋषि इतने प्रसन्न हो गए, हृदय उनका गदगद हो गया। उन्हीं के साथ चले और शिष्यगण सब चले, उपनिष पढ़ा चले, सब दिन दोपहर में सब चले, पूरे गुरुकुल ही चल पड़ा उनके पीछे। धम्म ऋषि आज इतने प्रसन्न थे क्योंकि देववद्य के फल भी ग्रहण नहीं किया, मैं कहूंगा तब खाएगा नहीं तो नहीं, जा करके कुएं के पास खड़ा रहे। दिन था, दिखाई पड़ रहा था बेचारा लहू लुहान होकर के तड़प रहा था, छट छट पड़ रहा था। और उनको फल बोले, उनको फल दीजिए, ऊपर से बोले बेटा उपमन्यु मैं बोल रहा हूँ, बेटा फल खा लो। गुरुजी मैं खाऊं ना? हाँ खा लो। वो खा फटाफट जल्दी से, वो इतना जोर से खाया चुबाने का टाइम नहीं, फटाफट डाउनलोड कर लिया। जैसे खाया देखते ही तुरंत वो तो दिव्य था ही, तुरंत सारे शरीर बिल्कुल स्पॉटलेस फाइन हो गया, दृष्टि शक्ति बिल्कुल चकाचक हो गया। और उठा रस्सी पका करके उसको खींच कर ऊपर उठा लाए, उठा करके वही जंगल के अंदर वही सुखा कुआं के किनारे गुरुजी ने मंगाए सर्टिफिकेट में मंगाए, साइन करके बोले लो ग्रेजुएट स्नातकोत्तर जाओ। आपको पोथी पत्र पकड़ना नहीं हुआ, खाता कलम हाथ में लिया भी नहीं, शुरू ही नहीं किया था, और कुछ नहीं शुरू किया था, सर्टिफाइड कर दी यू आर ग्रेजुएट स्नातकोत्तर। वो जा करके उपमन्यु एक दूसरा गुरुकुल खोला, जो अब तक पोथी पत्र हाथ में ना फॉर्मूला पढ़ा ना हाथ में लिया ना टच किया। ये महाभारत का आदि पर्व कथा, इसको कहते हैं कृपा सिद्ध। इस प्रकार गुरुजी को प्रसन्न किया, गुरुजी प्रसन्न होकर के वरदान दे दिए, सिद्धि हो गया। सारे वेद वेदांत, सारे अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, गुह्य ज्ञान सब हो गया ऑटोमेटिक, वो आचार्य बन गया, जाके अपना एक स्कूल खोल दिया। ये है सब प्रमाण, यही से गुरु की कृपा। अगर इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कोई करे तो इसे असंभव ही संभव होता है। इसलिए कहा गया जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथित, जो वेद के गुह्य रहस्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये गुरु कृपा का ये सामर्थ्य है, ये पराक्रम प्रभाव है। लेकिन हम कर नहीं पाते, जितने श्रद्धा विश्वास के मात्रा है इतने ही हमको सफलता प्राप्त होता है, जितना नहीं इतना नहीं होता। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? श्री चैतन्य चरितामृतम की संवेद भक्त।